بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراج ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی آدرنیہ شروتاؤں کی سیوا میں زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام پہنچے۔ پریہ شروتاؤں، آج کے کاریکرم کا شبھ آرمبھ ہم پوتر قرآن کے سورہ آراف کی 180 سے 183 تک کی آیتوں سے کر رہے ہیں۔ قاری ہیں شری علی اصغر برومند۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه، سيجزون ما كانوا وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم، إن كيدي متين، صدق اللہ العلی العظیم۔
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل اور دیاوان ہے، اور اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں، تو تم انہی کے دوارا اسے پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں کے وشے میں کٹلتا گرہن کرتے ہیں، جو کچھ وہ کرتے ہیں اس کا پھل وہ جلد پائیں گے، اور جن لوگوں کو ہم نے پیدا کیا ہے ان میں ایک گٹ ایسے لوگوں کا بھی ہے جو حق کے ساتھ مارگ دکھاتے ہیں اور اسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا हम उन्हें इस प्रकार आहिस्ता आहिस्ता जहन्नम में ले जाएंगे कि उन्हें पता भी नहीं चलेगा, और मैं उन्हें ढील देता हूँ, निसंदेह मेरी चाल दृढ़ है।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। श्रोताओ, कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। क्षमा कीजिएगा, आज शुक्रवार है, दिसंबर की 10, जमादिल अव्वल की 5 और आजर माह की 19 तारीख। कार्यक्रमों में आप विगत की ही भांति पहले विश्व समाचार सुनेंगे, फिर राजनीतिक चर्चा पेश की जाएगी, जिसके उपरांत आपका मनपसंद कार्यक्रम पेश किया जाएगा, पत्र संसार, और सभा के अंत में आप सुनेंगे साप्ताहिक कार्यक्रम विज्ञान की डगर। तो श्रोताओ, ये थी हमारे आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा। इन कार्यक्रमों पर आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindi@wsirib.ir। हमारे कार्यक्रमों को आप वेबसाइट पर देख सकते हैं partstoday.com/hi। और अब कुछ ही क्षणों में रेडियो तेहरान से विश्व समाचार पेश किए जाएंगे। ये तेहरान है, अब आप विश्व समाचार सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले आज के प्रमुख समाचारों का सारांश। ईरान के विदेश मंत्री का कहना है कि पश्चिम को यह समझना चाहिए कि उसे अपने वचन को व्यवहारिक बनाना होगा। काजिम सिद्दीकी ने ईरान को क्षेत्र की सबसे बड़ी ताकत बताया है। ट्रंप ने कहा है कि मैंने इसराइल की सेवा करके बहुत बड़ी गलती की है। रूस का मानना है कि अमेरिका और इसराइल के संयुक्त अभ्यास मध्य पूर्व के लिए खतरा है। और अब आप विस्तार से कायम रिजवी से विश्व समाचार सुनिए। विदेश मंत्री ने कहा है कि हम सब एक अच्छा समझौता करने के लिए वियना में हैं, और पश्चिम को ये जान लेना चाहिए कि ये अमल का समय है। विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा कि वियना में वार्ता का उद्देश्य एक अच्छा समझौता करना है। पश्चिम को अब ये समझ लेना चाहिए कि पिछले 8 वर्षों में काफी बातचीत कर ली गई है, और उसने ऐसा वादा किया है जिस पर अमल नहीं किया, किंतु आज अमल का वक्त आ गया है। विदेश मंत्री ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए अपने संदेश में कहा है कि पश्चिम को अपने वादों पर अमल करना चाहिए। उन्होंने लिखा कि हम सब वियना में हैं और एक अच्छा समझौता करने के लिए गंभीरता से प्रयास कर रहे हैं। तेहरान के इमाम जुमा ने कहा है कि वर्तमान समय में क्षेत्र में ईरान सबसे शक्तिशाली देश के रूप में है। हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन काजिम सिद्दीकी ने जुमे की नमाज के खुतबे में कहा कि इस समय ईरान क्षेत्र का ऐसा शक्तिशाली देश है जिस पर किसी भी देश में हमला करने का साहस नहीं है। उन्होंने वियना में जारी परमाणु वार्ता के बारे में कहा कि देश की लोकतांत्रिक सरकार विश्व के सभी देशों के साथ अच्छे संबंध चाहती है। उनका कहना था कि इस्लामी क्रांति की कोख से पैदा होने वाला इस्लामी गणतंत्र अब इतना मजबूत हो चुका है कि वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े बड़े तूफानों और बड़ी बड़ी चुनौतियों का मुकाबला करने में सक्षम है। तेहरान के इमाम जुमा ने कहा कि अमरीका ने विभिन्न चरणों, विशेषकर ट्रंप के काल में 3 मोर्चों पर इस्लामी गणतंत्र ईरान को नुकसान पहुंचाने का काम किया। उसका पहला मोर्चा अमरीकी वित्त मंत्रालय था, दूसरा मोर्चा अमरीकी विदेश मंत्रालय और तीसरा मोर्चा अमरीका की गुप्तचर सेवा CIA थी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि नेतन्याहू ने मेरे साथ जो विश्वासघात किया है उसके कारण मैं उस पर लानत भेजता हूं, मैं उसको कभी भी माफ नहीं करूंगा। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अपने शासनकाल में मैंने ज़ायूनी शासन की बहुत सेवा की। उन्होंने कहा कि उसके बदले नेतन्याहू ने मेरे साथ जो कुछ किया उसके कारण मैं उसे कभी भी माफ नहीं करूंगा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने एक ज़ायूनी वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में ये बात कही है। अपने इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि मुझसे ज्यादा किसी ने भी नेतन्याहू के लिए काम नहीं किया। मैंने इसराइल की बहुत सेवा की। उन्होंने कहा कि मैं ही था जिसने सेंचुरी डील करवाई। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था बल्कि एक बहुत बड़ा काम था जो मैंने इसराइल के लिए किया। ट्रंप ने कहा कि ये काम मैंने चुनाव से पहले किया और इसके अलावा मैंने नेतन्याहू की अलग से भी बहुत मदद की है। एक अमरीकी विचारक ने कहा है कि हम डेमोक्रेसी की बैठक की अगुवाई के नेतृत्व के लायक नहीं हैं। अमरीकी विचारक एवं बुद्धिजीवी प्रोफेसर स्टीफन वॉल्ट ने डेमोक्रेसी के संबंध में होने वाली वर्चुअल बैठक में भाग लेने के लिए कई देशों के नेताओं से जो बाइडेन के निमंत्रण की ओर संकेत किया। उन्होंने लिखा कि खेद के साथ कहना पड़ता है कि हम डेमोक्रेसी के संबंध में इस प्रकार के प्रयास के लायक ही नहीं हैं। अमरीका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने डेमोक्रेसी के संबंध में वर्चुअल बैठक में 110 देशों के नेताओं को भाग लेने का आह्वान किया। स्टीफन वॉल्ट ने इस बैठक में के आयोजन की आलोचना की और फॉरेन पॉलिसी में लिखा कि अभी ये स्पष्ट नहीं है कि इस बैठक के आयोजन का लक्ष्य क्या है। उन्होंने लिखा है कि इस बैठक में भाग लेने वालों का चयन बड़े हिसाब किताब से किया गया है। उन्होंने हंगरी और कांगो गणराज्य की ओर विशेष रूप से इशारा किया और लिखा कि फ्रीडम हाउस में हंगरी की स्थिति बेहतर होने के बावजूद उसे इस बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित नहीं किया गया, जबकि कांगो को इस बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। रूस का ये कहना है कि अमेरिका और इसराइल का संयुक्त सैन्य अभ्यास पश्चिम एशिया के लिए खतरनाक सिद्ध हो सकता है। रूस के विदेश उपमंत्री सर्गेई रियाबकोफ ने यह कहा है कि इसराइल और अमेरिका की ओर से संयुक्त सैन्य अभ्यास करने का फैसला पश्चिमी एशिया में अस्थिरता बढ़ाने का कारण बनेगा। उन्होंने अमरीकी और इसराइली अधिकारियों से मांग की है कि वे इस संयुक्त अभ्यास के कार्यक्रम को निरस्त करें क्योंकि ये अशांति बढ़ाने का कारण बन सकता है। रूस के विदेश उपमंत्री ने ये बात जोर देकर कही है कि मध्य पूर्व क्षेत्र में किसी भी प्रकार की सैन्य गतिविधि के गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं। इससे पहले पश्चिमी संचार माध्यमों ने वाशिंगटन के समाचारी सूत्रों के हवाले से बताया था कि अमेरिका के रक्षा मंत्री इसराइल के युद्ध मंत्री के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास के मुद्दे की समीक्षा कर रहे हैं। टीकाकारों का कहना है कि इस काम का उद्देश्य दोनों पक्षों की ओर से हर प्रकार की संभावित कार्रवाई के मुकाबले की तैयारी करना है। भारत द्वारा रूस से रक्षा प्रणाली S-400 खरीदे जाने पर अमेरिका ने चिंता जताई है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने भारत द्वारा रूस से प्रक्षेपास्त्रिक रक्षा प्रणाली S-400 खरीदे जाने पर चिंता जताई। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करते हुए भारत से मांग की है कि वो रूस से प्रक्षेपास्त्रिक रक्षा प्रणाली S-400 की खरीदारी को रोक दे। अमरीकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि अमरीका ने भारत सहित समस्त देशों का ये आह्वान किया है कि वे रूस से प्रक्षेपास्त्रिक रक्षा प्रणाली की खरीदारी न करें। पिछले सोमवार को रूस के विदेश मंत्री ने कहा था कि प्रक्षेपास्त्रिक रक्षा प्रणाली S-400 की खरीदारी के समझौते को कमजोर करते हुए अमरीकी प्रयास के बावजूद इस समझौते पर अमल किया जाएगा। अभी हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के दौरान रूसी रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की थी कि भारत और रूस के रक्षा मंत्रियों की उपस्थिति में दोनों देशों ने 2030 तक रक्षा क्षेत्र में कुछ समझौते किए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रवक्ता ने म्यांमार में 11 लोगों की हत्या पर दुख जताया है। उन्होंने इस हिंसा की कड़े शब्दों में निंदा की है। म्यांमार की सेना द्वारा 11 लोगों को जिंदा जलाए जाने के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने म्यांमार की सेना की निंदा की। म्यांमार के स्थानीय मीडिया और वहां के आम लोगों का ये कहना है कि सेना ने सगैंग प्रांत के डोंटाव गांव में रहने वाले 11 लोगों के हाथ बांधकर उनको जला दिया। हालांकि सेना ने इन दावों का खंडन करते हुए इसे फेक न्यूज बताया है, किंतु स्थानीय लोगों का यह कहना है कि उन्होंने अपनी आंखों से हाथ बंधी हुई जली लाशों को देखा है। बताया जा रहा है कि म्यांमार के सगैंग प्रांत के इस गांव के सैन्य समूह, पीपल डिफेंस फोर्स और सेना के बीच आए दिन झड़पें होती रहती हैं। हालिया दिनों में सगैंग सहित म्यांमार के दूसरे क्षेत्रों में भी सेना के विरुद्ध कार्रवाइयां तेज हो गई हैं। उल्लेखनीय है कि फरवरी में म्यांमार की सेना द्वारा सत्ता हथियाने के बाद से अब तक सैनिकों के हाथों लगभग 1300 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। दक्षिणी मैक्सिको में एक ट्रक के पलट जाने से कम 53 लोगों की मौत हो गई। ये ट्रक लोगों से भरा हुआ था और एक मोड़ पर बेकाबू होकर लोगों पर चढ़ गया। कुछ लोग इस हादसे को ट्रक चालक की लापरवाही भी बता रहे हैं। ये घटना गुरुवार की रात की है। इस दुर्घटना में कम से कम 53 लोग मारे गए और 50 से अधिक घायल हो गए। घायलों में बहुत से लोगों की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। दुर्घटना की गंभीरता को देखते हुए मृतकों की संख्या में वृद्धि की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। चियापास राज्य के नागरिक सुरक्षा कार्यालय के प्रमुख ने बताया है कि अधिकांश मरने वाले मध्य अमेरिका के अप्रवासी थे। इसी के साथ रेडियो तेहरान से विश्व समाचार समाप्त हुए।
ये प्रसारण आप रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा से सुन रहे हैं।
राजनीतिक चर्चा।
दोस्तों, कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा लेकर मैं सैयद मिसम आपकी सेवा में हाजिर हूं। हजरत जैनब के रोजे में उनके शुभ जन्म दिवस के अवसर पर जश्न का आयोजन किया गया। पेश है एक रिपोर्ट कायम रिजवी की जबानी।
पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वालेही वसल्लम के पवित्र परिवार की एक महान हस्ती हजरत जैनब के शुभ जन्म दिवस के अवसर पर उनके पवित्र रोजे में एक भव्य जश्न आयोजित किया गया। इस मुबारक दिन और खुशियों के अवसर पर हम दुनिया भर के सभी मुसलमानों को मुबारकबाद पेश करते हैं। इस जश्न में सभी लोगों ने उन शहीदों को श्रद्धांजलियां अर्पित की जिनके बलिदान और कुर्बानियों के साए में आज लोग शांति और सुरक्षा में जीवन गुजार रहे हैं। मैं जैनबिया इलाके का रहने वाला हूं। जनरल सुलेमानी के साथ हमारे बहुत से दोस्तों ने पवित्र रोजे की रक्षा और मूल्यों की रक्षा में अपनी जानें कुर्बान कर दी। अगर ये बहादुर हस्तियां नहीं होती तो सीरिया की सरजमीन पर अहले बैत का जिक्र बाकी शायद न रह पाता। सीरिया के हर इलाके के रहने वालों की तरह जैनबिया के रहने वाले लोग भी ईरान के भरपूर समर्थन के लिए उसका आभार जताने का कोई मौका भी हाथ से नहीं जाने جانے دیتے ہیں۔
ہم
سیریا کی جنتا کی اور سے اسلامی گٹھبندھن ایران، اسلامی پرتیرودھ اور حزب اللہ سنگٹھن کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے تکفیری آتنکواد کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے میں ہمارے دیش کی جنتا اور سرکار کی مدد کی۔ اس جشن میں بھاگ لینے والوں کو یہ سندیش تھا کہ ہم موجود ہیں کیونکہ حضرت زینب موجود ہیں، ہماری جان اور ہمارا مال بنی ہاشم اور اہل بیت کی مہان ہستیوں پر قربان ہو۔ مجھے اس بات کا گرو ہے کہ میرا بیٹا محمد حضرت زینب کے روزے کی رکشا کرتے ہوئے شہید ہو گیا۔ واسطو میں یہ برائی پر اچھائی کی جیت کا جشن ہے۔ یہ سامراجوادی شکتیوں کا سمرتھن پراپت آدھونک ہتھیاروں سے لیس آتنکوادیوں کا مقابلہ کرنے والے بہادر سپاہیوں کی دلیری کا جشن ہے۔ یہ ان شہیدوں کے دلیری کا جشن ہے جنہوں نے پرتیرودھ کرتے ہوئے اپنی جانیں دے دیں تاکہ اہل بیت علیہم السلام کے حق کا دھوج لہراتا رہے اور سیریا کی سرزمین پر کوئی بھی آتنکوادی اس روزے کو کسی طرح کا کوئی بھی نقصان نہ پہنچانے پائے۔ دمشق سے آئی آر آئی بی کے لیے حسام ہلالی کی رپورٹ۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ اور آپ سن رہے ہیں کاریکرم راجنیتک چرچا۔ سماچاروں سے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے گھٹناؤں کی تہ تک پہنچنے اور وبھن آیاموں کو چھونے کی کوشش۔ کاریکرم راجنیتک چرچا۔
ڈیموکریسی پر امریکہ ورچوئل کانفرنس آیوجت کر رہا ہے جس کا جائزہ لے رہے ہیں محمد مہدی۔
کافی سمے سے اس بات کا پرچار پرسار کیا جا رہا تھا کہ امریکہ کے راشٹرپتی جو بائیڈن ڈیموکریسی کے سمبندھ میں ایک ورچوئل بیٹھک کرنے والے ہیں اور یہ بیٹھک کل گروار سے بائیڈن کے بھاشن سے آرمبھ بھی ہو گئی ہے۔ اس دو دیوسی بیٹھک میں وشو کے 110 دیشوں کے نیتا اور پرتنیدھی بھاگ لے رہے ہیں۔ روچک بات یہ ہے کہ جن دیشوں کو اس بیٹھک میں بھاگ لینے کے لیے آمنترت کیا گیا ہے اس میں چین، روس، ہنگری، سعودی عرب، ترکی اور اسی پرکار دسیوں دوسرے دیشوں کا نام نہیں ہے۔ امریکی راشٹرپتی جو بائیڈن نے دعویٰ کیا ہے کہ اس بیٹھک میں 5 بندوؤں پر دھیان کیندرت کیا جائے گا۔ سنچار مادھیموں کی آزادی پر بل دیا جائے گا، اسی پرکار انتراشٹری استر پر برائی و بھرشٹاچار سے مقابلہ کیا جائے گا، ڈیموکریسی میں سدھار کرنے والوں کا سمرتھن کیا جائے گا، ڈیموکریسی کو وسترت کرنے والی تکنیک کو بہتر کیا جائے گا اور پاردرشی و نیا پورن ڈھنگ سے ہونے والے چناؤ کا سمرتھن کیا جائے گا۔ امریکہ نے ایسی استھتی میں ڈیموکریسی کے سمرتھک اور اسے وسترت کرنے والے کا وستر دھارن کر رکھا ہے جب یہ گیات نہیں ہے کہ دنیا کے کس سنگٹھن و سنستھا نے اسے یہ ذمہ داری سونپی ہے۔ ساتھ ہی مانواधिकारوں کے سمبندھ میں امریکہ کے کریا کلاپ جگ ظاہر ہیں۔ ان سب کے باوجود وہ مانواधिकारوں کی رکشا کا دعویٰ بھی کرتا ہے۔ ان چیزوں کے درشٹیگت ڈیموکریسی کے سمبندھ میں جو بیٹھک کر رہا ہے اس پر بھی پرشن چنہ لگ گئے ہیں۔ گیات رہے کہ اس سے پہلے روس اور چین اس پرکار کی بیٹھک کی آلوچنا کر چکے ہیں۔ الیکھنی ہے کہ امریکی راشٹرپتی جو بائیڈن آئیسی استھت میں ڈیموکریسی کے سمبندھ میں ہونے والی ورچوئل بیٹھک میں بھاگ لینے کا آہوان کر رہے ہیں جب عرب دیشوں وشیش کر فارس کی کھاڑی کی تاناشاہی سرکاروں سے امریکہ کے گھنشت سمبندھ ہیں۔ دوسرے شبدوں میں امریکہ ایک طرف سے دنیا کے دیشوں کو ڈیموکریسی کا درس دیتا ہے اور دوسری اور تاناشاہی سرکاروں کے ساتھ اس کے گھنشت سمبندھ ہیں۔ سعودی عرب اور بحرین جیسے عرب دیشوں کے ساتھ اس کے سمبندھوں کو اسی پرپیکش میں دیکھا جا سکتا ہے۔ بہت سے جانکار ہلکے امریکی ڈیموکریسی پر سوال اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امریکہ میں موجود ڈیموکریسی واستوک ارتھوں میں ڈیموکریسی نہیں ہے اور وہ جاری ورش 6 جنوری کو وائٹ ہاؤس میں ہونے والی اس گھٹنا کی اور سنکیت کرتے ہیں جس میں امریکہ کے پورو راشٹرپتی ڈونلڈ ٹرمپ کے سمرتھکوں نے چناؤ پر
परिणामों को स्वीकार नहीं किया और अमेरिकी कांग्रेस पर हमला कर दिया था। यही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने आज तक आधिकारिक तौर पर राष्ट्रपति पद के चुनाव परिणामों को स्वीकार नहीं किया और बारंबार कहा है कि चुनाव में धांधली और घपला हुआ है। यही नहीं, उन्होंने अमेरिकी डेमोक्रेसी को भी झूठी डेमोक्रेसी कहा है।
और अब रुख करते हैं भारत का। जम्मू कश्मीर के एक राजनेता ने धारा 370 की बहाली और कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग की है। ब्यौरा दे रहे हैं श्रीनगर से सिप्ते हसन।
भारत प्रशासित जम्मू कश्मीर के एक दिग्गज नेता और अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के जितने भी पुराने राजनीतिक दल हैं वो ऐसी राजनीति करना जानते हैं जिससे लोगों के जज्बात उभर सकते हैं। उन्होंने कहा कि धारा 370 और 35A के हवाले से जो वक्तव्य PDP और NC दिया करती है वो सिर्फ जज्बाती नारे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा ये मानना है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, या इसे सुप्रीम कोर्ट हल कर सकता है या फिर लोकसभा, और हम दोनों ऑप्शंस के लिए खुले हैं। उन्होंने कहा कि हमने ऐसी राजनीति नहीं करनी है और ना ही हम आगे ऐसी राजनीति करेंगे। एक जनसभा को संबोधित करते हुए अल्ताफ बुखारी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में शांति स्थापित करने के लिए नई दिल्ली को चाहिए कि वो फौरी तौर पर कश्मीर में विधानसभा के चुनाव करें और जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस करें। उन्होंने कहा कि जो कुछ हमारे साथ हुआ हमें भी उसके खेद हैं, परंतु अब हम वो लड़ाई लड़ना जानते हैं जो हम जीत सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम सपने लोगों को नहीं दिखाना चाहते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल राजनीति करना चाहते हैं। PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती और NC के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर तीखे आक्रमण भी किए और उन पर आरोप लगाया कि वो यहाँ एक बात करते हैं और नई दिल्ली में जाकर दूसरी बात करते हैं।
देखिए, अमूमन मैं महबूबा जी के बयानों पे कभी बोलना नहीं चाहता हूँ। महबूबा जी मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ बयान देती हैं। अब उनके इस बयान को मैं क्या ताबीर करूँ, क्या ये दिल्ली में जो उनके लिए स्टेज सजाया गया था।
अल्ताफ बुखारी ने कहा कि नई दिल्ली में जंतर मंतर पर जो धरना उनके अनुसार महबूबा मुफ्ती ने दिया वो नई दिल्ली ने उसके लिए अरेंज किया था। सिप्ती मोहम्मद हसन, रेडियो तेहरान, श्रीनगर।
इसी के साथ राजनीतिक चर्चा समाप्त हुई। ये प्रसारण आप रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा से सुन रहे हैं। अब प्रस्तुत है अगला कार्यक्रम पत्र संसार और उसके बाद आप सुनेंगे आखिरी कार्यक्रम विज्ञान की डगर।
पत्र संसार। दोस्तों, पत्र संसार कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपनी दीदी मरियम मेहर दादी और भैया अहमद अब्बास का सलाम स्वीकार कीजिए।
श्रोताओं, हमें आशा है कि आप जहां कहीं भी होंगे सकुशल होंगे और कार्यक्रम पत्र संसार सुनने के लिए तैयार होंगे।
तो भैया, हमेशा की भांति आज भी हम ईमेल और कमेंट्स
शामिल करेंगे, लेकिन देखना यह है कि शुरुआत कहां से करते हैं।
जी, तो ईमेल से ही शुरू करते हैं।
जी,
केसिंगा ओडिशा से सुरेश अग्रवाल का ये ईमेल है। लिखते हैं कि दिनांक 26 नवंबर को प्रसारित साप्ताहिक पत्र संसार के तहत श्रोता मित्रों की प्रतिक्रियाओं के बीच पेश सांस्कृतिक खबर में ये जानकर बेहद खुशी हुई कि ईरान सीरिया में दाइश के आतंकवादियों द्वारा नुकसान पहुंचाए गए वहां के ऐतिहासिक स्मारकों का जीर्णोद्धार करेगा। मेरी राय में ऐतिहासिक स्मारक चाहे कहीं भी हों, इंसानी सभ्यता की साझी विरासत होते हैं और उन्हें संरक्षित करना हम सभी का परम कर्तव्य है। ایران نے اپنی ذمہ داری کو سمجھا، اس لیے وہ سادھواد کا پاتر ہے۔ اچھی خبر سنانے کے لیے تہ دل سے شکریہ۔
بہت بہت دھنیواد آپ کا اگروال جی، اور یہ بات بالکل صحیح آپ نے کہی کہ سانسکرتک دھروہر ایک سنیکت وراثت ہے، سنیکت خزانہ ہے ساری مانوتا کے لیے، اور واقعی ان کا کوئی مولیہ طے نہیں کیا جا سکتا، یہ انمول ہیں یہ چیزیں سماج کے لیے اور سبھی لوگوں کے لیے، یعنی ہر انسان کے لیے یہ چیزیں انمول ہیں۔ تو اسلامی گڑتنتر ایران کی اگر بات کی جائے تو خود ایران کے اندر دیدی آپ دیکھیے تو جتنی بھی سانسکرتک دھروہریں ہیں، جو بھی ایتیہاسک اوشیش ہیں، ان کی بڑی حفاظت کی جاتی ہے، ان کو بڑی حفاظت سے رکھا جاتا ہے، کہیں کوئی نقصان نہ پہنچنے پائے اس کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے۔ تو اسلامی گڑتنتر ایران نے سیریا میں پلمائرا کے سندرب میں بھی جو کام کیا ہے وہ سراہنیہ ہے۔
آنند موہن بین، انہوں نے لکھا ہے، یہ بھلائی چھتیس گڑھ سے ہے
جی،
لکھتے ہیں کہ قرآن تلاوت، سماچار، اتر کوریا کو چنوتیوں کا سامنا کرنا، الجیریا، فرانس سے ناراض، میکرو کا غلط بیان، راکیش ٹکیت، کسان آندولن لاگو رہے گا، راجنیتک چرچا، ایران پر پرتیبندھ، ایران پر پرتیبندھ سمجھ سے پرے ہے، امریکہ کے ہر پریزیڈنٹ کا رویہ ایک جیسا ہے، اور قائم رضوی کے مہتوپورن رپورٹ، سبھی انہوں نے کارکرم کے بارے میں لکھا
ہے،
ہاں جی جی، اور ریسپشن سننے لائق نہیں ہے، ایرانی سنسکرتی پر دیدی کی چرچا کافی اچھی لگی، الیکٹرانک کار آج کے سمے میں سب سے ادھک ضروری وشے ہے، سائنس پروگرام بھی کافی اچھا لگا، ٹیومر پر چرچا کافی اچھی لگی، دھنیواد۔
بہت بہت دھنیواد آپ کا آنند بھون بین جی، کہ آپ نے اپنے وچاروں سے ہمیں اوگت کروایا،
پورا کاریکرم انہوں نے ٹھیک سے سنا ہے،
یہ بڑے اچھے شروتا ہیں دیدی، اور بہت پرانے شروتا ہیں اور بڑے نیمت شروتا ہیں
جی،
اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ نیمت روپ سے اپنے وچار بھیجتے رہتے ہیں،
اس لیے ہم بھی اسے ہمیشہ شامل کرتے
جی
ہیں
جب بالکل
ان کا،
یہ ان کا ادھیکار ہے جی، چونکہ جس طرح کے سنجیدہ اور گمبھیر شروتا ہیں، تو آشا کرتے ہیں کہ آگے بھی اس سمپرک اسی طرح سے جاری رہے گا، پتراچار بھی جاری رہے گا، اور ریسیپشن کی جو بات ہے دیدی، یہ بار بار شکایت آ رہی
جی
ہے، اس کا صحیح ہونا بہت زیادہ
جی ضروری ہے، ہم نے تو ان کی جو بات تھی ہم نے پہنچا دی تھی
جی،
ابھی اس پہ کام ہو رہا ہے، لیکن اتنا آسان نہیں ہے، فریکوینسی کا وہ ڈش جو ہوتا ہے
جی،
اسے ٹھیک طرح سے فکس کرنا انڈیا میں
جی،
وہ تھوڑا بہت مشکل ہے تھوڑا، اس لیے دیکھتے ہیں کیا
کوشش ہو رہی ہے، تو آشا کرتے ہیں کہ اس کا نتیجہ بھی سامنے آئے گا۔ اور شوتا، اب باری ہے پھر سنسکرتی سے جڑی خبر کی، جس کے بارے میں بھی ہم نے وستار سے بات کی۔
تو بھیا، آج ہم انگور کی چاشنی پکانا کے بارے میں بتا رہے ہیں،
یہ بھی ایک پرمپرا ہے، اور اسے بڑے ایک سماروہ کے روپ میں آیوجت کیا جاتا
جی
ہے، بہت سارے لوگ،
پچھلی بار ہم نے انار کو
جی
پکانا
جی
بتایا
جی
تھا
جی، آج تو آپ اسی کرم میں یہ نئی خبر جوڑ رہی ہیں
جی جی۔ دوسا یا انگور کی چاشنی پکانا بہت لمبے سمے سے ایران کے اتر پشچمی کھیتر آذربائیجان میں پھلوں کے رس اور اس کے گنوں کو سنرکشت کرنے کا ایک پارمپرک طریقہ رہا ہے
جی۔
ارومیا اور اس کھیتر کے انیہ شہروں میں لوگ ستمبر کے انت میں اور شروعاتی سردی سے پہلے، جب انگور پوری طرح سے پک جاتے ہیں اور میٹھے ہوتے ہیں، تب دوسا پکانا شروع کرتے ہیں، یعنی چاشنی پکانا شروع
جی
کرتے ہیں۔ پشچم آذربائیجان پرانت کے لگ بھگ سبھی کھیتروں میں جہاں انگور اگایا جاتا ہے، دوسا تیار کیا جاتا ہے اور اسے گھر گھر میں الگ الگ بھوجن پکانے کے لیے اپیوگ کیا جاتا ہے، دودھ میں دوسا ملا کر بھی سیون کیا جاتا ہے۔ انگور اتپادن میں ایران کا پشچمی آذربائیجان پرانت دیش میں چوتھے استھان پر ہے۔ دوسا ایک بہت اچھا پوشک تتو ہے اور اس کے کئی سواستھ لابھ بھی ہے، ادھارن کے لیے یہ اینیمیا کے علاج کے لیے بہت اپیوگی ہے، اس کے علاوہ اس کی گرم پرکرتی کے کارن دوسا ٹھنڈ کے موسم کے لیے اچھا ہے اور یہ ٹھنڈ اور انیہ بیماریوں کو روکنے میں مدد کرتا ہے۔ डोसा बनाने के लिए सबसे पहले अंगूर को अच्छे से धोकर एक बर्तन में डाल दिया जाता है। पारंपरिक तरीके से डोसा उत्पादक अंगूरों को अपने पैरों से कुचलते हैं, फिर वे एक विशेष बर्तन में रस को मिट्टी के साथ मिलाते हैं। एक दिन बाद ये मिट्टी जम जाती है और इस अवस्था में रस को एक बड़े बर्तन में डालकर साफ किया जाता है। फिर बड़ी सी कढ़ाई में डालकर लकड़ी की आग पर रस को कई घंटों तक उबाला जाता है और अच्छे से पककर थोड़ा गाढ़ा होने के बाद उसे बोतलों में भरकर कई महीनों तक इस्तेमाल किया जाता है और इसे पूरे देश में बेच दिया जाता है।
और अब बारी है कमेंट्स की, तो देखते हैं दीदी ने क्या कमेंट्स सुने हैं आज के कार्यक्रम के लिए।
जी, ईरान के विरुद्ध प्रतिबंधों को समाप्त किया जाए अर्दोगान, इस पर महमूद हसन लिखते हैं, ये इस क्षेत्र के लिए एक अच्छी खबर है। मुस्लिम देशों को एक होना चाहिए और एक दूसरे के साथ सहयोग करना चाहिए।
ये महत्वपूर्ण बात है, चूँकि खुद तुर्की पर भी अमेरिका की ओर से दबाव है, बल्कि जितने भी वो देश जो अमेरिकी नीतियों का कहीं भी किसी भी तरह से कभी भी विरोध करें उन पर अमेरिका दबाव डालने की कोशिश करता है। तुर्की ने भी जो खुद अमेरिका के दबाव का मुकाबला कर रहा है, सामना कर रहा है और देख रहा है कि अमेरिकी नीतियां किस तरह से अन्यायपूर्ण हैं, तो इस्लामी गणतंत्र ईरान के संदर्भ में भी आवाज़ उठाता है। इस्लामी गणतंत्र ईरान भी इस्लामी जगत पर बार बार बल देता आया है कि ये एक शरीर की भांति है और इस्लामी जगत को मजबूत बनाने की ज़रूरत है। तो ये बात बिल्कुल सही, अगर इस्लामी जगत के देश एक दूसरे के लिए आवाज़ उठाते हैं, आपसी सहयोग को बढ़ाते हैं, तो एक बेहतर स्थिति हो सकती है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर।
हथियारों से लदे 100 अमरीकी ट्रक सीरिया में पहुंचे, इस पर अली आवेदी लिखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका इस सीरियाई तेल को चुराता है और इसे रंगभेदी इसराइल को भेजता है और इस वजह से सीरियाई अब की इस सर्दी में मौत के मुंह में चले जाएंगे, क्योंकि सीरिया एक बड़ा तेल उत्पादक नहीं है, ये यूएस डेमोक्रेसी है।
जी, ये बात सही है कि अमेरिका जिस तरह की हरकतें सीरिया में कर रहा है वो खुलेआम डकैती है। सीरिया का तेल जो कि देर उजूर के इलाके में ख़ास तौर पर जिसके बड़े भंडार हैं वहाँ से अमेरिका चुरा रहा है, इसराइल को बेच रहा है, अपने तौर पर बेच रहा है और ट्रंप तो इसका बाकायदा इस पर बयान भी दे चुके हैं, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति। तो अमेरिका ये हरकतें जो कर रहा है ये खुली हुई चोरी और डकैती है।
ईसीओ की शिखर बैठक में राष्ट्रपति रईसी ने उठाया क्षेत्रीय सहयोग का मुद्दा, अफगानिस्तान और अमरीकी पाबंदियों पर भी रखी अपनी राय। इस पर सज्जाद नियानी लिखते हैं, किसी भी देश को ईरान पर दोष मढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। अगर ये ट्रंप द्वारा बहाल किए गए प्रतिबंधों के लिए नहीं होता तो JCPOA को पुनर्जीवन की आवश्यकता नहीं होती, जिसे हास्यास्पद रूप से बातचीत कहा जाता है।
जी, ये जहाँ तक JCPOA की बात है जिस पर वार्ता चल रही है, देखिए इस वक्त अलबत्त अब दोबारा वार्ता शुरू होने की बातें हैं, यानी एक सिलसिला है, वार्ता के कई दौर हो चुके हैं और आगे के दौर की तैयारियां हैं। तो ये वियना में जो वार्ता है इसके संदर्भ में एक बात बड़ी साफ है कि इस्लामी गणतंत्र ईरान ने अपना स्टैंड बहुत साफ दो टूक शब्दों में रखा है। अमेरिका ने परमाणु समझौते से बाहर निकलकर ईरान पर जो प्रतिबंध लगाए, ईरान की मांग है कि वो प्रतिबंध हटे। ईरान अपनी मांग में पूरी तरह स्पष्ट है, अमेरिका को ये संदेश समझना होगा। तो अब बारी है यहाँ विचार सुनते हैं श्रोता की, लेकिन इस बार श्रोता के साथ ही साथ हमारी बहुत ही पुरानी उद्घोषिका और पूर्व साथी उनके विचार दीदी शामिल कर रहे हैं, जो कि श्रोताओं के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है। बहुत दिनों के बाद وہ ایک بار پھر آواز سنیں گے ہم سب کے لیے بڑی جانی پہچانی اور ہم سب کی بہت ہی پریے ادگھوشکا کے نام میں چاہوں گا کہ دیدی خود بتائیں.
جی یہ ہے شہناز حسن اور اب یہ گڑگاؤں میں رہتی ہے, تو چلیں ان کے وچار سنتے ہیں.
ریڈیو تہران کو نمن اور سلام. آج کچھ آپ کی سائٹ کے بارے میں میں بولنا چاہتی ہوں. میرے وچار میں آج کے اس بہت ہی جھوٹ پر آدھارت میڈیا میں یدی کبھی کسی کو سچی خبریں یا سماچار دیکھنا ہوں تو میں تو ریڈیو تہران ہی کو ریکمینڈ کروں گی. اور ریڈیو تہران کی ویب سائٹ پر جب میں جاتی ہوں تو بہت ساری ایسی خبریں بہت سارے ایسے سماچار دکھائی دیتے ہیں جو کہیں اور دکھائی نہیں دیے یا کہیں اور نہ پڑھا نہ سنا. لگتا ہے کہ مطلب ان میں بہت سچائی ہے, ان میں کہیں کوئی جھوٹ نہیں ہے. اور سچی خبروں کا تو جیسے آج کل بالکل اکال پڑا ہوا ہے انتراشٹریہ میڈیا میں بھی اور بھارت کی میڈیا میں تو بالکل بھی نہیں انتراشٹریہ سماچاروں پر زور دیا جاتا, بہت ہی کم یہاں پر اخباروں میں یا ٹی وی میں یا اور جگہ بہت کم ہوتا ہے. لیکن آپ کی جو سائٹ ہے اس پر یعنی ہر بہت سے بھارت کے سماچار ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہمیں یہاں نہیں پتہ چل پاتے صحیح ڈھنگ سے, جن کو کہ ہم وہاں پڑھتے ہیں آپ کی سائٹ پر تو ہم کو لگتا ہے یہ بالکل ٹھیک لکھا ہوا ہے, ایسے ہی ہوا ہوگا.
تو دیدی اب سمے بالکل نہیں بچا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اب
جی اور یہ سمے ہم یہ جو شہناز دیدی کی بات چیت تھی اسے ہم پہلے پورشن میں سنوا رہے ہیں کیونکہ سمے ہمارے پاس کم تھا. تو اگلا پورشن ہم اگلے کارکرم میں سنوائیں گے پتر سنسار میں.
جی
تو اسی کے ساتھ اب ہمیں انومتی دیجیے. خدا
خدا حافظ. یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے. ریڈیو تہران سچائی اور ان سب کی آواز جن کی آواز کوئی نہیں سناتا. تازہ سماچاروں اور سٹیک سمیکشاؤں کے لیے ہم سے جڑیے اور ہمیشہ جڑے رہیے. اور اب ریڈیو تہران کی ہندی سیوا کا اگلا کارکرم. وگیان کی ڈگر.
دوستو کارکرم وگیان کی ڈگر کے کنکڑی کے ساتھ آپ کی سیوا میں اپستھت ہیں مریم مہردادی اور اختر عباس کا سلام سویکار کیجیے.
दोस्तों आज के कार्यक्रम में हम विज्ञान की दुनिया में होने वाली कुछ प्रगतियों और अवसाद या डिप्रेशन के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे. दोस्तों साइमागो वेबसाइट द्वारा जारी की जाने वाली रैंकिंग में वर्ष 2016 में ईरान बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दुनिया में एक पायदान आगे बढ़ा और इस तरह से वो दुनिया में 13वें स्थान को हासिल करने में कामयाब रहा. बायोटेक्नोलॉजी माइक्रो जीव विज्ञान की वो शाखा है जिसमें सूक्ष्म जीवों का विशेष औद्योगिक प्रक्रिया में उपयोग पर अध्ययन किया जाता है.
इस दर्जबंदी में मध्य पूर्व के देशों में ईरान जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शोध पत्रों के उत्पादन में पहले नंबर पर रहा, जबकि तुर्की, सऊदी अरब और मिस्र क्रमशः दूसरे से चौथे नंबर पर हैं। साइमा को वेबसाइट की ओर से जारी रैंकिंग की बुनियाद पर चीन इस क्षेत्र में दुनिया में पहला देश है, उसके बाद अमेरिका, भारत, दक्षिणी कोरिया जैसे देशों का नंबर आता है।
दोस्तों, आपको ये भी बताते हुए खुशी हो रही है कि 2012 से 2017 के बीच के वर्षों में ईरान की शरीफ टेक्निकल यूनिवर्सिटी के दो शोधकर्ताओं के पत्रों ने खूब धूम मचाई और सबसे ज़्यादा प्रकाशित और पढ़े जाने वाले शोध पत्रों के रूप में पहचाने गए। ट्रांसपोर्टेशन रिसर्च पार्ट ई नामक पत्रिका में ये शोध पत्र छपे हैं। ये पत्रिका परिवहन के क्षेत्र में सबसे विश्वसनीय और मान्यता प्राप्त पत्रिकाओं में से है। इस शोध पत्र ने इसी साल अन्य शोध पत्रों में 10वां दर्जा हासिल किया, जबकि उसके बाद के साल में इससे पहली पोजीशन हासिल करने में रिकॉर्ड कायम कर दिया।
इस शोध पत्र को तैयार करने वाले एक शोधकर्ता का कहना है कि जब भूकंप आता है तो घटनास्थल तक पहुंचने और लोगों को मदद पहुंचाने की आवश्यकता होती है। इन कठिन और जटिल परिस्थितियों में सहायता करने वाली संस्थाओं और संगठनों को अधिक जिम्मेदारी के साथ अच्छे नतीजे हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। इन कठिन हालात में सहायता करने वाली संस्थाएं और संगठन संकट के स्थान या सही घटना स्थल पर नहीं पहुंच पाते, जिसकी वजह से उनका काम बहुत अधिक प्रभावित हो जाता है और उनके कार्यक्रम अधूरे रह जाते हैं। इस शोध पत्र में ज्यादा से ज्यादा प्रभावी ढंग से काम करने के उपाय और कारणों पर रोशनी डाली गई है।
दोस्तों, अब हम अवसाद या डिप्रेशन के कारणों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले ये सवाल उठता है कि अवसाद और डिप्रेशन किन कारणों से होता है? जैविक, अनुवांशिक, मनोसामाजिक, जैव रासायनिक असंतुलन के कारण अवसाद हो सकता है। अवसाद के भौतिक कारण भी अनेक हैं, जैसे कुपोषण, अनुवांशिकता, हार्मोन, मौसम, तनाव, बीमारी, नशा, अप्रिय स्थिति में लंबे समय तक रहना, पीठ में तकलीफ आदि इसके मुख्य कारण हैं। 90% अवसाद के मरीज नींद की समस्या से ग्रस्त होते हैं। अपने ढंग से न जी पाना और बहुत अधिक महत्वाकांक्षी होना, जिसके नतीजे में इच्छा पूर्तियों की पूर्ति न हो पाना अवसाद को जन्म देता है। कोई हादसा या प्रियजन से बिछड़ जाना भी डिप्रेशन को जन्म दे सकता है।
एक बड़ा कारण समाज में फैली आशंका भी है कि लोग क्या कहेंगे। हमारे मन में इस गहरी आशंका से न जाने कितने मनोविकारों को जन्म दिया है। अपना जीवन साथी, अपनी आजीविका, करियर, अपनी पसंद से ना चुन पाना एक बड़ा कारण है। तनाव व दुख का जो आगे चल के अवसाद का रूप ले लेता है।
अब ये सवाल पैदा होता है कि अवसाद या डिप्रेशन के कितने प्रकार हैं। इसकी पहली किस्म मेजर डिप्रेशन है। इस स्थिति में व्यक्ति का मिजाज बदलते रहता है। ये व्यक्ति की दैनिक गतिविधियों और व्यक्तिगत संबंधों पर भी प्रभाव डालता है। दूसरी किस्म बाइपोलर डिसऑर्डर है। इसे मैनिक डिप्रेशन भी कहते हैं। चिड़चिड़ापन, गुस्सा, मति भ्रम जैसी स्थिति इनमें पाई जाती है। एकदम निराश फिर अत्यधिक खुशी होना इनमें मुख्य है।
साइकोलोमेटिक डिसऑर्डर ये तीसरे तरह का डिप्रेशन है, जिसमें लक्षण सूक्ष्म लगते हैं। इसमें माइल्ड डिप्रेशन और हिपोमानिया देखा जाता है। चौथा प्रकार डिस्टमिक डिसऑर्डर है। इसमें मरीज को 2 वर्ष या उससे अधिक समय तक डिप्रेशन अनुभव होता है। वह अपने आप को अस्वस्थ भी महसूस करता है तथा दैनिक कार्यों में भी कठिनाई महसूस करता है।
पांचवी किस्म पोस्टमार्टम डिप्रेशन है। पोस्टमार्टम डिप्रेशन एक गंभीर समस्या है जो बच्चे के जन्म के कुछ दिनों बाद मां को हो सकती है। गर्भपात से भी महिला इस स्थिति में जा सकती है। छठी किस्म सिकोटिक डिप्रेशन है। ये बहुत ही गंभीर समस्या है। इसमें लोग अन्य लक्षणों के साथ मति भ्रम, तर्कहीन विचार, ऐसी चीजें देखना सुनना जो नहीं है के शिकार हो जाते हैं।
सातवीं किस्म एनाक्लिटिक डिप्रेशन है। यह नवजात शिशु में पाया गया है जिसमें बच्चा किन्हीं कारणों से अपनी माँ से अलग होता है। माँ का प्यार न मिलने से शिशु डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। और आठवीं किस्म एटिपिकल डिप्रेशन है। ये युवाओं में पाया जाता है। इन मरीजों में कार्बोहाइड्रेट क्रेविंग भी पाई जाती है। आखिरी किस्म सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर है। ये मौसम के अनुसार होता है। आमतौर पर यह स्प्रिंग या सर्दियों में शुरू हो जाता है और गर्मियों में खत्म हो जाता है।
दोस्तों, डिप्रेशन या अवसाद की किस्मों के बारे में आपने सुना और अब सवाल ये पैदा होता है कि डिप्रेशन या अवसाद का उपचार कैसे किया जाए। भाग्यवश अवसाद का इलाज है या इलाज नहीं है। यदि आपके पास कोई भी व्यक्ति बताए गए 2 से 3 लक्षणों या अधिक से ग्रस्त है तो उसे तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाएं। 2 हफ्ते से अधिक यदि कोई व्यक्ति दुखी या उदास है और खाना पीना ठीक से ना ले रहा हो तो वो अवसाद में ग्रसित हो सकता है। उसे डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। दवाइयां और मनोचिकित्सा एक साथ लेने से अधिक असर होता है।
अवसाद की समस्या गंभीर हो जाने पर डॉक्टर से सलाह करके उपचार करना जरूरी है। आहार, योग, प्राणायाम और ध्यान उपचार है तो बहुत लाभदायक है और पूरी तरह से इसे ठीक करने में सहायक है। इसी के साथ अन्य कारण जैसे कुपोषण और बीमारियां जो साथ में हैं उन्हें ठीक करना मुख्य होता है।
एक पुरानी कहावत है, जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। भोजन में जरूरी पोषक तत्व ना होने से अवसाद की स्थिति और बिगड़ जाती है। सही आहार अवसाद को ठीक करने में अति सहायक है। 70-90% मनोविकारों में अच्छे आहार से लाभ मिलता है। एपिजिन में परिवर्तन करने वाले स्वास्थ्यदायक आहार का प्रयोग करें जिससे मन अच्छा रहेगा और नींद भी ठीक होगी कि आपकी कार्यक्षमता को बढ़ाएगी। सीरोटोनिन को फील गुड हार्मोन कहते हैं जो आपके मन को अच्छा रखता है और अच्छी नींद में सहायक है। ट्रिप्टोफैन युक्त आहार जैसे चना इत्यादि सीरोटोनिन की मात्रा बढ़ाने में सहायक है।
इसके सहायक आहार क्या होते हैं? विटामिन B12 और दूध, साबुत अनाज, ब्रोकली, बादाम, पालक, दालें, सप्लीमेंट्स इत्यादि को इसी तरह सेलेनियम युक्त आहार को डिप्रेशन के लक्षण घटाने में सहायक माना जाता है, जैसे साबुत अनाज और दालें आदि। ब्राउन राइस, ओटमील और त्रिकोण फल में भी सेलेनियम पाया जाता है। विटामिन डी जैसे सूरज की किरणें, सप्लीमेंट्स, जूस, अनाज, ब्रेड इत्यादि, ओमेगा-3 फैटी एसिड जैसे बादाम, अखरोट, अलसी आदि सप्लीमेंट भी ले सकते हैं।
एंटीऑक्सीडेंट ये हमारे शरीर में बन रहे फ्री रेडिकल्स लड़के उन्हें खत्म करते हैं और खराब सेल बनने से रोकते हैं। विटामिन ई, विटामिन सी और विटामिन ए इसका मुख्य अंग है। बीटा कैरोटीन ब्रोकली, गाजर, पालक, शकरकंद, कद्दू, एप्रिकोट इस समस्या को दूर करने में बहुत लाभदायक हैं। विटामिन सी से युक्त चीज़ें जैसे कीवी, टमाटर, ब्लूबेरी, ब्रोकली, अंगूर, संतरा, काली मिर्च, आलू, एवोकाडो आदि से भी इस कठिनाई से मुक्ति हासिल करने में मदद मिलती है।
जिंक जैसे मक्का, साबित अनाज, बीन्स, नट्स आदि अथवा इससे सप्लीमेंट्स में लिया जा सकता है। प्रोटीन यह अत्यधिक महत्वपूर्ण अंग है जीवन के लिए। बीन्स, मटर, चीज, दूध, दही, सोयाबीन आदि प्रोटीन के मुख्य तत्व हैं।
दोस्तों, इसी तरह आप कुछ सामान्य आहार में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे मैदे की जगह आप गेहूं के आटे का प्रयोग करें, यह अधिक हल्का होता है। चीनी की जगह शहद या गुड़ का प्रयोग करें। नट्स, बीन्स और फल एक साथ आहार में शामिल करें। ओटमील को नाश्ते में शामिल करें। आर्टिफिशियल फ्लेवर की जगह दालचीनी, नटमेग या नेचुरल वेनिला का प्रयोग करना अच्छा होगा। लो फैट पनीर का प्रयोग उत्तम होगा। और भी बहुत कुछ है, किंतु प्रयास करें ताज़ा और शुद्ध भोजन करें और सही समय पर भोजन कर लें।
रात का भोजन 8 और 9 बजे के बीच और दोपहर का 12 से 1 बजे के बीच करने का प्रयास करें। घर के बाहर निकलें, प्रतिदिन सैर पर जाएं और व्यायाम को अपने जीवन में स्थान दें। तनाव और अवसाद अपने आप से दूर हो जाएगा।
एक महत्वपूर्ण बात याद रखें, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं। जीवन तब तक सही नहीं चलता जब तक आप सही चीजें नहीं करते। यदि आप सही परिणाम चाहते हैं तो सही कार्यों का चयन करें, फिर जीवन हर दिन एक खूबसूरत चमत्कार से कम नहीं है। हमें अपने जीवन का चार्ज अथवा जिम्मेदारी लेनी होगी, जिससे हमारे अंदर की असीमित क्षमताएं निखर कर आएंगी और तनाव रहित जीवन बनाना आसान हो जाएगा।
तो दोस्तों, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अनुमति दीजिए।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। दोस्तों, हमारा ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस बारे में आप अपने विचार हमें लिख भेजिए। हमारा ईमेल आईडी है hindi@wsiribir। हमारी वेबसाइट है parstoday.com/hi। तो दोस्तों, इसी के साथ रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा की ये सभा अब यहीं पर संपन्न होती है। आप सभी से अब हम अनुमति चाहते हैं। शुभ रात्रि, खुदा हाफिज़।